ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ, ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ, ಗೋಪೀ ಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರ ಧಾರಿ, ಜಯ ಜಯ ಗೋಪೀ ಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರ ಧಾರಿ, ಜಯ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ, ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ, ಯಮುನಾ ತೀರ ವನಚಾರಿ, ಯಮುನಾ ತೀರ ವನಚಾರಿ, ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ, ಜಯ ರಾಧಾಗಿರಿಧಾರಿ, ಜಯ ರಾಧಾಗಿರಿಧಾರಿ, ರಾಧಾಗಿರಿಧಾರಿ, ಜಯ ರಾಧಾಗಿರಿಧಾರಿ, ರಾಧಾಗಿರಿ ರಾಧಾಗಿರಿಧಾರಿ, ಜಯ ಜಗನ್ನಾಥ, ಜಯ ಜಗನ್ನಾಥ ಬಲದೇವಾ, ಜಯ ಸುಭದ್ರಮಯ್ಯ, ಜಗನ್ನಾಥ ನಿತ್ಯ ಗೌರ ಹರಿ ಬೋ, ಹರಿ ಬೋ, ಹರಿ ಬೋ, ಹರಿ ಬೋಲ ನಿತ್ಯ ಹರಿ ಬೋ, ಹರಿ ಬೋ, ಹರಿ ಬೋ, ಜಯ ಜಯ ಪ್ರಭುಪಾದ, 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 ಜಯ ಜಯ ಪ್ರಭುಪಾದ, 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 ಪ್ರಭುಪಾದ.
ಜಯ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದ ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಜಕಾಚಾರ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಸತಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮತಿ ಡಿವೈನ್ ಗ್ರೇಸ್ ಅಭಯ ಚರಣಾರವಿಂದ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮಹಾರಾಜ ಕೀ, ಅನಂತ ಕೋಟಿ ವೈಷ್ಣವ ಕೀ, ನಾಮಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಲ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಕೀ, ನಿತಾಯ್ ಗೌರ ಪ್ರೇಮಾನಂದೇ, ಆಲ್ ಗ್ಲೋರಿಸ್ ಟು ಅಸೆಂಬಲ್ ಡಿವೋಟಿಸ್, ಆಲ್ ಗ್ಲೋರಿಸ್ ಟು ಅಸೆಂಬಲ್ ಡಿವೋಟಿಸ್, ಆಲ್ ಗ್ಲೋರಿಸ್ ಟು ಅಸೆಂಬಲ್ ಡಿವೋಟಿಸ್, ಆಲ್ ಗ್ಲೋರಿಸ್, ಆಲ್ ಗ್ಲೋರಿಸ್, ಆಲ್ ಗ್ಲೋರಿಸ್ ಟು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರು ಅಂಡ್ ಗೌರಾಂಗ. ಜಯ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೀ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद नौवा अध्याय चौदहवा श्लोक की क्रम संख्या है 37 9.14.37। स्त्रियो ही अकरुणा क्रूरा। दुर्मसा प्रिय साहसा नंती अल्पार्थे अपि विस्रब्दम् विस्रब्दम् पतिम् भ्रातरम् अपि उत। स्त्रियो हि अकरुणा क्रूरा। स्त्रियो हि अकरुणा क्रूरा दुर्मसा प्रिय साहसा। दुर्मसा क्रिय साहसा ज्ञान्ति अल्प अर्थे अपि विस्रब्दा। ज्ञान्ति अल्प अर्थे अपि विस्रब्दा पतिं भ्रातरम् अपि उत। पतिं भ्रातरम् अपि उत। अल्प अर्थे अपि विस्रब्दम् माताजी। माताजी दुर्मसा प्रिय साहसा नंत अल्प आते विस्रब्दम् पतिं भ्रातरमाप्युता। स्त्रिया ही निसंदेह अकरुणा करुणा रहित क्रूरा चालाक मक्कार दुर्मसा असहिष्णु प्रियसाहसा अपने आनंद के लिए कुछ भी करने वाली दुस्साहसी। नंती मार डालती है। अल्प अर्थे छोटे से कारण के लिए अपि निसंदेह विस्रब्दम् आज्ञाकारी पतिम पति को भ्रातरम भाई को अपि भी उत्त कहा गया है। अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद महाराज ने दिया है। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद इस प्रकार है, स्त्रियों की जाति करुणा विहीन तथा चतुर होती है, थोड़ा सा भी अपमान सहन नहीं कर सकती, वे अपने आनंद के लिए कुछ भी अधर्म कर सकती है, अतः एव वे अपने आज्ञाकारी पति या भाई तक का वध करते हुए नहीं डरती। तात्पर्य, राजा पुरुरवा उर्वशी पर आसक्त था, किंतु उसके पत्नी भक्त होने पर भी उर्वशी ने उसे छोड़ दिया था। अब यह विचार करते हुए कि राजा दुर्लभ मनुष्य जीवन को गंवा रहा है, उर्वशी ने स्पष्ट शब्दों में स्त्री की प्रकृति बतला दी। अपनी प्रकृतिवश थोड़े से भी अपराध पर अपने पति की हत्या कर देती है, यही नहीं वह अपने भाई को भी मार सकती है, वह स्त्री की प्रकृति है। अतः एवं इस भौतिक जगत में अब तक स्त्रियों को सती तथा पति परायणा होने का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, तब तक समाज में न तो शांति हो सकती है न संपन्नता। अतः एवं इस भौतिक जगत में जब तक स्त्रियों को सती तथा पति परायणा होने का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, तब तक समाज में न तो शांति हो सकती है न संपन्नता। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीतं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदंतिकं। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्ताय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछाकल्पतृभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्री श्री राधा गिरिधारी जी की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री श्री निताय गौर चंद्र की, निताय गौर प्रेमानंदे। श्री श्री राधा गिरिधारी जी प्रकट हुए मुझे बचाने के लिए। श्लोक ही ऐसा कठिन है कि भगवान ही अगर आके प्रवचन देते तो अच्छा था, या शिला प्रभुपाद जी आके देते। बनामली प्रभु का था वास्तव में, पता नहीं शायद श्लोक देख के ही वो बोले मैं भाग जाता हूँ मैं नहीं दूंगा। बोले पद्मनाभ दास को। उर्वशी उवाच, उर्वशी बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं। स्त्रियों की जाति करुणा विहीन तथा चतुर होती है। देखिए भाषांतर करने वाला व्यक्ति भी कितना डरपोक रहेगा कि शब्दार्थ बरोबर नहीं किया जाए, जबकि उर्वशी बोलती है करुणा के बाद क्रूर। अब क्रूर का शब्द अर्थ हिंदी में चतुर नहीं होता एक्चुअली, लेकिन शायद हिंदी भाषांतर करने वाला भी डर रहा है या सोच रहा है कि मैं ऐसे कैसे क्रूर लिखूं किसी के लिए, वो भी स्त्रियों के लिए तो उसने चतुर शब्द लिखा है यहाँ पे, विच इज एक्चुअली नॉट करेक्ट। वे थोड़ा सा भी अपमान सहन नहीं कर सकती, वे अपने आनंद के लिए कुछ भी अधर्म कर सकती हैं, अतः एवं वे अपने आज्ञाकारी पति या भाई तक का वध करते हुए नहीं डरती। कथा हम सब लोग जान रहे हैं कि पुरुरवा जो कामवश स्त्री भक्त पत्नी भक्त बना हुआ था और उर्वशी उसके साथ संग करने के लिए स्वर्ग से आई थी, पत्नी बनकर रही थी उसके साथ, ये शर्त थी कि कभी भी उसको निर्वस्त्र अगर देखेगी तो वो चली जाएगी। इस बात को ध्यान रखते हुए देवता इंद्र ने गंधर्व को बताया कि इसी बात का लाभ लेकर उर्वशी को वापस बुला लीजिए, क्योंकि वहां इंद्र भी उर्वशी इसके बिना नहीं रह पाता है, क्योंकि ये कोई साधारण अप्सरा तो थी नहीं, ये सबसे सुंदर स्वयं भगवान के अंग से प्रकट हुई अप्सरा थी। ये नर नारायण ऋषि जब हिमालय पे तप कर रहे थे और जब इंद्र ने ये सोचा कि ये भी कोई सामान्य व्यक्ति है जो तप कर रहा है, तो उसको विचलित करने के लिए, नरनारायण ऋषि को यानी उनको विचलित करने के लिए इंद्र ने दो सुंदर उसके पास जो अप्सरा थी उसको भेजा था। वो नहीं जानता था कि ये भगवान है, वो समझा कि है कोई ऋषि मुनि, सत्ययुग में सब तप करते रहते वैसे ही कोई। नरनारायण ऋषि ने देखा कि अरे ये क्या स्वर्ग की अप्सराओं को भेजा है, ये तो मामूली चीज है, मैं इससे भी अति 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 सुंदर अप्सरा प्रकट करके इंद्र को ही गिफ्ट कर देता हूं, तब उसको समझ में आएगा कि ये कोई मेरे सामने चलने वाला नहीं है। तो अपने शरीर से थाइस वहां से एक अप्सरा प्रकट की और बोला ले जा इंद्र तुम्हारे लिए गिफ्ट है। उस दिन से लेके ये कथा चल रही है तब तक या आगे भी इंद्र अति आसक्त रहा है इस पर्टिकुलर अप्सरा उर्वशी के साथ। लेकिन जब उर्वशी को श्राप मिला था पृथ्वी पे आने का, तो उर्वशी सोचती है कि पृथ्वी पे जाकर मैं किस पुरुष के साथ रहूंगी, किसके संरक्षण में रहूंगी। ये एक अति महत्वपूर्ण शिक्षा उर्वशी दे रही है यह सोचकर, ये बताकर। हाँ, भले हम इसे अप्सरा कहते हैं, हाँ इसे अंग्रेजी में अप्सरा नहीं कहेंगे, सोसाइटी गर्ल कहेंगे, या हिंदी बंबईया भाषा में प्रोस्टिट्यूट भी कह देते हैं कई बार लोग, लेकिन ये एक्चुअली इतनी महान स्त्री है। देखो ये सोच रही है कि अब मुझे नीचे श्रापवश जाना है तो मैं किस पुरुष के संरक्षण में या अधीन रहूंगी, ये इसका एक महान गुण है। एक्चुअली स्त्रियों को सदैव किसी न किसी पुरुष के अध्यक्ष में नियंत्रण में ही रहना वेद का आदेश है। छोटी है तब पिता के संरक्षण में रहें, बड़ी होके ब्याह हो जाता है तो पति के संरक्षण में रहें, पति के चले जाने के बाद पुत्र के संरक्षण में रहें, ये वेद का कथन है, ये शास्त्र कहता है। और उर्वशी इस बात को जानते हुए सोच रही है कि किसके संरक्षण में मैं नीचे जाऊं। तब उसे याद आया कि नारद मुनि स्वयं एक बार इंद्र की सभा में पृथ्वी के एक पुरुरवा समय हुआ करते थे, उनका गौरव गाये करते थे, स्वयं नारद मुनि। हाँ, मैं इस बात को पहले भी शुक्रवार के प्रवचन में बताया था कि पुरुरवा का वर्णन जो है श्रीमद् भागवतम में, एक हमारी दृष्टि से अगर देखें सोचे तो हमें लगेगा ये बहुत कामी व्यक्ति है और क्या क्या गलत कार्य करते जा रहा है। इस व्यक्ति को, इस अध्याय को समझने के लिए हमारी बुद्धि नहीं चल सकती, इसे शास्त्र की, भागवत की दृष्टि से और आचार्यों की दृष्टि से ही देखना पड़ता है। हाँ, ये चंद्रवंश में आया हुआ महान राजा है, इनमें अनेक गुणों थे, इतने सारे गुण थे कि उनके संरक्षण में अगर कोई आए तो उसे वो 100% 100% संरक्षण प्रदान करते थे। उनके सारे ये गुण, यहाँ तक कि नारद मुनि स्वयं स्वर्गलोक में जाके उनका गुणगान गाते थे। सोचो ना, तो नारद जैसे महात्मा जिन्हें संसार से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे व्यक्ति को पुरूर वहां का गुणगान वहां गाने की क्या आवश्यकता होगी। लेकिन वो जानते थे कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये आगे चल के इतिहास करने वाला है, ये आगे चल के भागवत में इसका वर्णन है। तो उर्वशी ने ये सब गुणगान सुने थे तो उसने सोचा कि पृथ्वी पे इस समय पुरूरवा के अलावा कोई व्यक्ति नहीं है जो मेरा पति बन सके। हालांकि वो स्वर्ग थी, स्वर्ग से आई थी, श्रेष्ठ थी, लेकिन श्रापित होने की वजह से यहां आई थी। तो यहां पुरूरवा जो क्षत्रिय है वही उसका पति के रूप में वह स्वीकार कर सकती है। आकर पुरूरवा से कहती है कि मैं आपकी पत्नी रूप में रहना चाहती हूं आपके साथ। तो पुरूरवा महाराज ने बताया कि ये ठीक ही होगा, आ जाइए, हम आपको संरक्षण प्रदान करते हैं। तो स्वाभाविक है, पत्नी है तो संग करेंगे, पुत्र प्राप्ति करेंगे। वेदों के नियम के अनुसार, मैंने शुक्रवार को समझाया था भागवत प्रवचन में, कैसे वेदों के नियम के अनुसार उसे पत्नी के रूप में स्वीकार किया। क्षत्रिय राजा है, अनेक पत्नी स्वीकार कर सकता है, वो नियम के अनुसार था। नियम के अनुसार पुत्र प्राप्ति करता है, लेकिन इस भौतिक जगत का एक माया का खेल ऐसा है ना कि ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात संजयते काम। किसी भी व्यक्ति का ध्यान धरो, उसके बाद उसका संग करो तो काम पैदा हो जाता है, और काम ऐसा प्रबल पैदा हो जाता है कि व्यक्ति अपने आप को नष्ट करने को तैयार है, लेकिन काम का जो इंद्रिय भोग का जो साधन है उसे किसी परिस्थिति में छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। तो जब ये गंधर्व इंद्र के आदेश से उर्वशी को वापस लेने आए, तब उन्हें पता था कि हम पुरूरवा से तो युद्ध नहीं कर सकेंगे, इसीलिए उन्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो वेद के नियम के अनुसार या तो कुछ पहले की स्थिति के अनुसार ले जाया सके उर्वशी को। तो जानबूझ के उर्वशी के साथ आए हुए दो जो मेमन थे, जो लैम्प, उसको उठा के ले गए। उर्वशी चिल्लाने लगी, ये रक्षा करने गए गंधर्व से लेकर आए, लेकिन रात्रि के अंधकार में किया था तो वस्त्र तभी पहने नहीं थे। और फिर जानबूझ के गंधर्व ने अपना तेज प्रकट किया तो लाइट होने से वो निर्वस्त्र दिख गए। तो उर्वशी ने कहा, देखो मैंने वचन दिया था, पहले ही कहा था आपको, शर्त रखी थी कि अगर आप निर्वस्त्र मेरे सामने प्रस्तुत होंगे तो मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। क्योंकि किसी भी परिस्थिति में शास्त्र इस बात का आदेश नहीं देता है, पुरुष को या स्त्री को, अपने जो समझो स्त्री है तो पुरुष को निर्वस्त्र देखें या पुरुष है तो स्त्री को निर्वस्त्र देखें, वो भी विशेष करके प्रकाश में, दिन में या रात्रि के प्रकाश लाइट वगैरह में। केवल अंधकार में पति पत्नी संग के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए कहते हैं, उसी का केवल परमिशन शास्त्र देता है, इसके अलावा नहीं देता है। इसके अलावा आजकल जो चल रहा है वो सब पापाचार है। हाँ, स्त्रियां या पुरुष जो अर्धवस्त्र या निर्वस्त्र घूमते हैं ये सब वेदोक्त नहीं है, ये कलयुग की सभ्यता है। तो उर्वशी देखो कितनी सज्जन थी, उसने तुरंत कहा कि मैं जाऊंगी अभी, क्योंकि ये तो आप गलत कर दिए, वेद के विरुद्ध कर दिए, अब आपके शरण में मैं नहीं रहूंगी, चली गई। लेकिन यहां जो काम से आसक्त हुआ था पुरूरवा, अब दुख में डूब गया। हाँ, यही एक संसार का नियम है कि जब स्त्री से आसक्त व्यक्ति को अगर उसकी स्त्री नहीं मिलती है तो वो हद की बार दुखी हो जाता है, इतना दुखी हो जाता है ना कि उसके अलावा उसको जगत में और कुछ प्रिय नहीं है। उसे लगता है कि बस मेरा अस्तित्व खत्म हो गया, मैं मर जाऊंगा, कुछ रह ही नहीं सकता हूं। ऐसा हम भी अपने इस समाज में भी देखते रहते, कभी किसी युवान पुरुष और स्त्री का समझो प्रेम है और विवाह नहीं होता है तो कई बार वो लोग आत्महत्या कर देते हैं, है ना, वो रह नहीं जा सकता। आसक्ति एक ऐसी चीज होती है, ये अल्टीमेट वेपन है माया का, अंतिम शस्त्र है जो सब समय किसी भी परिस्थिति में किसी भी पुरुष पे चलने वाला ही है, कुछ भी हो जाए। देवताओं पे भी चलता है, ब्रह्मा पे भी चलता है, केवल भगवान और भगवान के सच्चे भक्त रामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर या रामानंद राय जैसे महात्माओं के ऊपर ये शस्त्र नहीं चल सकता, अन्यथा सभी पे ये शस्त्र चलता है। तो ये उर्वशी चली गई। अब ये बहुत दुखी, लेकिन एक बार की घटना हुई कि कुरुक्षेत्र के वहां उर्वशी को वापस उसने देखा, पुरुरवा महाराज ने अन्य लोगों के साथ, गंधर्व के साथ थी, तो वहां जाकर वापस गिड़गिड़ाते, अरे तुम ऐसे कैसे मुझे छोड़ के चली गई हो, हा? और मैं कितना इधर दुखी हूं, मैं तेरा पति हूं, मेरी परिस्थिति को देख, मेरे साथ नहीं रहना तो कम से कम मेरे साथ बैठ के थोड़ी बात करो। आसक्त व्यक्ति तो यही सोचता है कि कम से कम स्त्री मेरे से बात है, ये भी एक प्रकार का काम ही होता है जो हृदय में, इसको काम शास्त्र इसका वर्णन करते हैं कि स्त्रियों में अनेक प्रकार के काम होते हैं, करीबन 18 अलग अलग प्रकार का उसका चरित्र का वर्णन करते हुए बताते हैं कि स्त्री कैसे काम के बांध चला सकती है। उसमें एक है, इसमें पुरुष स्त्री से बात करते भी एक आनंद का अनुभव करता है, ऐसे जैसे काम तृप्ति का जो अनुभव रहता है वही अनुभव वो करता है। तो वो कहते कम से कम मेरे से बात कर, हाँ संग नहीं करना है तो कोई बात नहीं, कम से कम मेरे साथ बैठ के बात तो कर। तो उर्वशी कहती है ठीक है, वैसे पत्नी तो थी उसकी, तो बोले ठीक है बताइए क्या है। तो उसे बहुत प्लीडिंग करता है, आजीजी करता है कि मुझे छोड़कर मत जाओ करके। तो कहती है वो तो संभव नहीं है, लेकिन हाँ एक कार्य हो सकता है कि मैं साल में केवल एक ही बार आपसे संग करूंगी फिर चली जाऊंगी। तो वो कहता है ठीक है वो भी चलेगा करके। लेकिन फिर तुरंत उर्वशी सोचती है कि ये आदमी कितना आसक्त है, हा? पहले बोलता है बात कर, अभी बोलता है एक दिन रहो मेरे साथ चलेगा। इस दुर्लभ मनुष्य जीवन जो इसे प्रदान किया गया है और ये सत्युग का समय है, ये यज्ञ करके या भगवान विष्णु पे ध्यान केंद्रित अपना करके ये भगवत प्राप्ति कर सकता है, और ये आदमी मेरे पीछे आसक्त होकर अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। तब उर्वशी ने यह सोचा कि इससे स्त्री का वास्तविक जो स्वरूप होता है, जो नेचर होता है, उसकी जो प्रकृति होती है, वो उसे मैं बता दूं, शायद ये भूल गया लगता है कि स्त्री की प्रकृति क्या होती है, स्त्री कैसे हर मनुष्य का मनुष्य जीवन बर्बाद करती है, हाँ उसे भक्त नहीं बनने देती है। हालांकि ये सारा वर्णन शास्त्रोक्त है, मैं अपना कोई उसमें ऐड नहीं करने वाला हूं, कुछ अनुभव पे आधारित कभी कुछ आएगा तो मैं बताऊंगा कि मेरे अनुभव पे आधारित है, सब शास्त्रोक्त है। और यहां पे उन स्त्रियों का वर्णन है जो भक्त नहीं है, इसलिए भक्त स्त्रियों के लिए ये सब नियम या ये सब बातें या ये प्रवचन लागू नहीं होता है। कल मैं ऐसे ही मजाक में, जब मुझे दोपहर को फोन आया कि आप प्रवचन देना, तो दिन में तो मैं ऑफिस में भागवतम नहीं खोला था, रात को जब मैंने खोला पढ़ा तो मैं ऐसे ही मजाक में सोच रहा था कि माताजियां सब, मुझे लगता है स्पेशली हमारी गुजराती माताजियां, बेलड़ बेलड़ लेने जाओते हैं कि आपने छुपाड़ी ने रखू, जो प्रभु जी कहीं खोटू बोले तो आपने मारसू एमने, अने सारू बोले तो फेंकी देसु बेलन खोटा ऊपर इन लाइवा। पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि भक्त स्त्रियों के लिए ये प्रवचन नहीं है, ये केवल अमेरिकन नॉन डिवोटीज, हाँ जो वैदिक कल्चर के विरुद्ध होती है, ऐसी सब स्त्रियों की यहाँ पे बात चल रही है। भक्त स्त्रियों में द्रौपदी भी आती है, जिसकी गाथा भागवतम गाता है, जिसकी गाथा स्वयं भगवान गाते हैं, जिसकी गाथा बड़े बड़े आचार्य गाते हैं, हाँ ये ऐसी महान स्त्री है। कुंती महारानी है, ऐसे अनेक सतियां हुई है अपने समाज में, वो भी स्त्रियां ही है, और उन्हीं से अन्य अनेक लोगों को भक्ति भी प्रदान हुई है, उन्हीं से अनेक भगवान स्वयं भी कपिला देव स्त्री के गर्भ से प्रकट होते हैं, वो चाहते तो अपने ऐसे ही प्रकट हो सकते थे, लेकिन वो ऐसी भी स्त्रियां शास्त्र में वर्णित है, और भक्त स्त्रियां वैसे ही होती है। तो यहां उर्वशी उनके स्त्रियों के प्रकृति के बारे में बताते हुए ये श्लोक पुरुरवा महाराज को बता रही है, जो मैं संस्कृत दे रहा हूं क्योंकि ये गलत ट्रांसलेशन अनुवाद किया गया है हिंदी में, शिला प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में सही किया है, कनिंग लिखा है क्रूर के लिए, यहाँ पे चतुर, बहुत डर गया रहेगा इसलिए उसने चतुर लिख दिया है। स्त्रियां, ये उर्वशी कह रही है निसंदेह, यानी 100% निसंदेह, कोई शंका मत करना पुरुरवा ऐसे, अकरुणा, उनमें कोई करुणा या दया कभी नहीं होती है, क्रूर, अति मक्कार होती है। क्रूर का शब्द एक्चुअली हमारे भाषा में ही ठीक समझ में आ रहा है, हाँ उसको ट्रांसलेट करने की या भाषांतर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हिंदी या गुजराती में क्रूर बोला तो समझ जाते हैं हम लोग के क्रूर का अर्थ क्या होता है। क्रूर होती है, दुमसा असहिष्णु। असहिष्णु इसके लिए बताया कि स्त्री को अगर कोई इच्छा प्रकट होती है तो उसे तुरंत ही चाहिए, वो इच्छा पूरी उसकी तुरंत ही होनी चाहिए। अगर शॉपिंग मॉल में घूमते घूमते कोई साड़ी पसंद आ गई तो उसे चाहिए ही, तुरंत ही चाहिए, कुछ भी हो जाए, चाहे 1500 की है 25000 की है, पति को परवड़ेगा नहीं परवड़ेगा वो कम सोचेगी, चाहिए अभी चाहिए तुरंत। नो टॉलरेंस, असहिष्णु है, इमीडिएट रिक्वायरमेंट। प्रिय साहसा, अपने आनंद के लिए कुछ भी करने वाली, दुस्साहस, दुस्साहस। लेकिन प्रिय साहसा का अर्थ होगा कि अपने आनंद की या प्रिय वस्तु को प्राप्त करने के लिए वो कितना भी बड़ा साहस उठा सकती है। वास्तविक अर्थ ये होगा, दुस्साहस शब्द पता नहीं इन्होंने क्यों घुसाया इधर, दुस्साहस नहीं आता है, मतलब होता है कि अपनी प्रिय वस्तु को प्राप्त करने के लिए वो कितना भी बड़ा साहस कर सकती है। हालांकि ये कोई दुर्गुण नहीं है, एक्चुअली ये गुण है। व्यक्ति को अपनी प्रिय वस्तु प्राप्त करने के लिए इस पृथ्वी लोक पे मेहनत करना, साहस करना, कर्तव्य करना, ये तो आवश्यक है। तो उसमें स्त्री भी कर रही है, पुरुष भी कर रही है, तो कोई अलग नहीं है। हाँ, लेकिन आगे कहती है, गंती मार डाल सकती है किसी को भी अगर उसकी प्रिय वस्तु उसको नहीं मिल रही है तो। अल्प अर्थ है, अल्प अर्थ यानी छोटी सी छोटी बात अगर प्रिय है तो उसे प्राप्त करने के लिए भी वो किसी को भी मार सकती है, यहां तक कि पति या भ्रात्र यानी भाई, पति को भी मार सकती है या भाई को भी मार सकती है स्त्रियां। ये शायद उर्वशी बहुत ज्यादा ही डरा रही है पूर्व रवा महाराज को, बहुत ऐसा इतना कठोर बोल बोल के डरा रही है कि उसको छोड़ दे या भूल जाए या भगवान की भक्ति में लगे, उसी उद्देश्य से वो बोल रही है, उसका और कोई उद्देश्य नहीं है। हाँ, उसको लेडीज लोगों को ऐसा क्रिटिसाइज करके माताजियों को नीचे लाने का उद्देश्य नहीं है। यहाँ प्रभुपाद जी ने लिखा भी है इसके पहले और इसके आगे के तात्पर्य में भी कि उसका उद्देश्य था कि पुरुरवा महाराज अपने मनुष्य जीवन का सही अर्थ को समझे और स्त्रियों से अनासक्त हो जाए, ये इसका उद्देश्य था। तो इस उद्देश्य से कहती है कि इनमें कोई करुणा नहीं होती है। तो मैं विचार कर रहा था कि करुणा नहीं होती है, दया नहीं होती है, लेकिन शास्त्र तो कई बार ये भी कह चुका है कि स्त्रियों के हृदय में भरपूर करुणा होती है और विशेष करके अपने पुत्र के प्रति। तो कभी कभार शास्त्र या भागवतम जैसे ग्रंथ क्या करते हैं कि जो हमेशा की स्थिति है प्राय, उस स्थिति का वर्णन न करते हुए कभी कभी अपवाद की बात करती है। जैसे भागवतम इस समय वर्णन जो कर रहा है स्त्रियों के चरित्र की, या उर्वशी जो बता रही है वो कलयुग में आने वाले स्त्रियों के बारे में बता रही है। जैसे अभी 5-6 दिन पहले ही एक इस्कॉन निगड़ी मंदिर में गया था तो वहां के एक भक्त मुझे बता रहे थे जो सत्य घटना है उस विस्तार की, कि वहां एक माता ने अपने सगे पुत्र को बर्बाद करने के लिए ब्लैक मैजिक का सहारा लिया। अब ब्लैक मैजिक यानी तांत्रिक विद्या से उसने अपने पुत्र को ही बर्बाद किया। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में कुछ क्लेश हुआ था और दूसरा एक पुत्र था उसका जिसके साथ उसका अच्छा संबंध था, तो उसको बेनिफिट दिलवाने और इस पुत्र को खत्म करने के लिए स्वयं माता ने ब्लैक मैजिक किया और उसको बर्बाद कर दिया। वो लड़का इंजीनियर था, धनी था, पढ़ा लिखा था, सुखी संतुष्ट था, लेकिन आज के समय में न तो उसके जॉब पे है, न कोई उसके पास धन है, उसका परिवार की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। और जब पूरा पता किया गया, क्योंकि भक्तों से जुड़ा हुआ था तो उसका जो दुख था उसको दूर करने के लिए भक्त समाज वहां पे प्रयत्न कर रहा था, तो पता करने पे पता चला कि माता ने ही किया है यह दुस्साहस। यहां पे दुस्साहस शब्द बोल सकते हैं हम लोग, यहां पे अतिसाहस नहीं बोला जा सकता। एक स्त्री होकर पुत्र के लिए इस युग में इस समय देखो ऐसे कर रही है। अब प्रैक्टिकली हम सब लोगों ने यह अनुभव किया रहेगा, अब ये मेरे अनुभव की बात बता रहा हूं, शास्त्र की नहीं है, कि स्त्री जब माता बनती है उसका पुत्र बड़ा हो जाता है, पुत्र पालन के पीछे इसका हेतु रहता है कि मैं ये बड़ा होकर मेरी कुछ सहायता करेगा, वृद्ध अवस्था में मुझे धन कमा के देगा, और मेरी बात मानेगा, मेरे आदेश में रहेगा, मुझे एक अच्छा मशीन मिलेगा, इंस्ट्रूमेंट मिलेगा जो मेरी हर इच्छा को पूर्ण करने के लिए ताकतवर रहेगा। और उसी संबंध में ये स्त्री ये भी सोचती है कि इसी मेरे पुत्र को एक अच्छी कन्या के साथ में विवाह करवा दूं, ताकि मेरे बुढ़ापे में खेलने के लिए मुझे और छोटे पुत्र उससे प्राप्त होंगे, हाँ, और मैं आनंद का जीवन जीऊंगी। हमारे गुजराती माँ हमें कहिए हरखवा बहु होए माता ने कि मारा पुत्र ना लग्न करावी दऊं, हरखवा। आगर जता केम हरखवा आवे छे ये सांभळी रह्या छे आपणे हवे। हरखवा हड़कवा में कई रीतना बदलाई जाए। तो ये स्त्री विवाह करवाती है, अति प्रसन्न होकर, एकदम ही खुद ही ढूंढ के लाएगी कन्या को, खुद ही पूरा मेहनत करती है। बच्चा अगर तैयार नहीं है, अगर लड़का कहता है मुझे ब्रह्मचारी बनना है, तो उसे मना करेगी, रोएगी, ब्लैकमेल करेगी, कितना क्या क्या उत्पात करके जबरदस्ती भी शादी करवा देगी। इस्कॉन के ब्रह्मचारी कई लोगों ने अनुभव किया रहेगा ये। हाँ, हरखवा इतना है कि नहीं, उसकी पत्नी कैसे भी करके उसको स्त्री को लाना ही है। उसका हेतु है कि और एक साथ में दासी भी जैसे मिल जाए मुझे। लेकिन धीरे 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 क्या होता है, दो स्त्रियों का जल्दी कभी बन नहीं सकता है, इतिहास इसकी गवाह देता है। दो स्त्रियों का कभी भी नहीं बनेगा, चाहे फिर द्रौपदी और सुभद्रा भी मिले ना तो भी शुरुआत में तो एटलीस्ट लड़ाई करेंगे, बाद में ठीक है भक्त स्त्रियां तो सेटलमेंट हो जाता है, और अभक्त स्त्रियों का तो सेटलमेंट ही नहीं हो सकता है आगे चल के। तो फिर सास और बहू लड़ाई करते हैं, और फिर जब वो लड़ाई आगे बढ़ती है, ये देखा गया है कि जब पुत्र जब फंस जाता है कि माता का पक्ष ले या पत्नी का पक्ष ले, क्योंकि वो तो दोनों बाजू के धर्मों से बंधा हुआ है, वो वही व्यक्ति है, वही लड़का है जिसे माता कहती है कि ये मेरा पुत्र है, मैंने इसको बड़ा किया है, खिला पिला के, पढ़ा लिखा के, इसके ऊपर पूरा मेरा 100% अधिकार है, ये मेरी ही सेवा करे, मेरी ही बात माने। लेकिन उसी व्यक्ति के लिए पत्नी क्या सोच रही है, ये मेरा पति है, मैं इसके आधारित ही यहां पे आई हूं, अब इसे केवल मेरी शरण में रहना चाहिए, मेरी ही बात मानना चाहिए 100%, ये मेरा अधिकार है इसके ऊपर। अब उसी व्यक्ति के लिए दो स्त्रियां अधिकार के लिए लड़ती है और उसी को खींच रही है। उस बीच में वो बेचारा जब धन उपार्जन करने नौकरी या बिजनेस करने जाता है, तो वहां का सेठ, वहां बिजनेस कर रहा है तो कस्टमर, वो कहते हैं ये हमारा नौकर है, हाँ, इसको हम पगार दे रहे हैं, ये हमारी ही शरण में रहेगा, हमारी ही बात मानेगा, हाँ, इसको जो हम कहेंगे वो 100% हमारे ही शरण में रहना है, बात मानना है। उसी व्यक्ति को अब तीसरा भी खींच रहा है, माता खींच रही है, पत्नी खींच रही है, सेठ खींच रहा है। बच्चे अगर हो गए तो वो कहते हैं ये तो मेरे पिता है, अब बाकी सबको भूल जा, मम्मी को, दादी को, पत्नी को, हाँ, सेठ को, हमारी शरण में आ, जैसा हम कहते हैं वैसा कर, हमारे लिए आइसक्रीम लेके आ, हमारे लिए पाव भाजी लेके आ, हमारे लिए कपड़े लेके दे, हमारे लिए वो कर ये कर, हमको घुमाने लेके जा, हमारा पूरा अधिकार है तुम पर, तुम हमारे लिए हो, छुट्टी तुम्हारे लिए नहीं है, आराम के लिए हमारे लिए। उसी व्यक्ति को अब चौथा कोई खींच रहा है, उसमें भी अगर किसी ने उसको हरे कृष्णा सिखा दिया, अब मंदिर के संपर्क में आ गया, तो अब उसी व्यक्ति को पांचवा एक समाज, भक्त समाज खींचेगा। अरे भाई मंदिर क्यों नहीं आते हो, दिखते नहीं हो, हाँ, क्या हो रहा है आजकल, साप्ताहिक भक्त हो गए या मासिक भक्त हो गए या वार्षिक भक्त हो गए, तू हमारा है, हमारे मंदिर का है, हमारे समाज का है, तुझे यहीं पे आना है, यहीं पे सेवा करनी है, सब कुछ तुझे मुझे अर्पण करना है 100%, शास्त्र कहता है तन मन धन सब कुछ इधर ही तुझे अर्पित करना है। अब उसे पांचवा खींच रहा है कोई, उसमें भी अगर उसकी दीक्षा हो गई तो गुरु कहते हैं तू अब मेरा शिष्य है, अब तू किसी का नहीं रहा, अब उसे कोई छठा खींच रहा है। अब इस बेचारे पुरुष की हालत इतनी खराब होती है ना, सब जब सोचो एक व्यक्ति को रस्सी से 6 जन बांध के, एकदम पक्की रस्सी से, और सब लोग उसको अपनी ओर खींच रहे हैं, अब उसकी परिस्थिति बेचारे की सोचो क्या होगी। और ऐसे समय में देखा जाता है कि माता के हृदय में पत्नी के प्रति ईर्षा, ये पत्नी है ना, पुत्र के पत्नी के प्रति ईर्षा, बहू के प्रति ईर्षा जागृत होती है, और वो ईर्षा धीरे 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 इतना बड़ा रूप लेती है कि कई कितने भक्तों ने ये स्वीकार किया है हमारे वार्तालाप में कि उसकी माता उसके साथ भी आगे चलकर ईर्षा करती है, अपने ही पुत्र के साथ ईर्षा करने लगती है। जब वो ऐसा देख रही है कि पुत्र मेरा होकर न होकर पत्नी का होए जा रहा है, तो उसकी ईर्षा हो जाती है, पहले पत्नी से बाद में पुत्र से ही, और वो ईर्षा एक आगे चल के कभी कभी आग का स्वरूप प्रकट लेती है। इसलिए यहां पे कभी कभार ऐसे बताया जा रहा है कि स्त्रियां क्रूर होती है, वो कुछ भी कर सकती है, वो अपनी इच्छा इंद्रिय तृप्ति के लिए दुस्साहस भी कर सकती है, अपने पुत्र से भी ईर्षा कर सकती है, वैर कर सकती है, अपने पुत्र का भी वो ब्लैक मैजिक प्रयोग करके उसको बर्बाद कर सकती है, जिसको अभी देखा जा रहा है। तो ये इसका वर्णन है कि वो दुस्साहसी कुछ भी कर सकती है, यहां तक कि पद मारना पड़े तो मारती है, भाई को मारना पड़े तो मारती है। पता नहीं आजकल के युग में तो कोई मेरे सामने ऐसा कोई उदाहरण याद नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़े अगर पिछले इतिहास में जाए ना तो करीबन 1000 साल के पहले तो विष कन्याएं होती थी, वो अपना हेतु प्राप्त करने के लिए किसी को भी डस के आती थी और मार देती थी। कुछ लोग कहते हैं कि रिसेंटली अपने थोड़े समय पहले अपने एक स्त्री प्रधानमंत्री थी, उसने अपने स्वार्थ के लिए, अपने पॉलिटिकल पर्पस के लिए अपने पति की हत्या करवाई थी। सही गलत पता नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है, इसलिए शास्त्र तो ये कह रहा है कि कलयुग में स्त्रियां ऐसा कर सकती है, आगे चलकर हो सकता है, वो उस ऐसे ही बातों का संकेत दे रही है। और वो भी कैसे, आज्ञाकारी पति का भी वो वध कर सकती है, आज्ञाकारी पति रहेगा ना, वो भी उसका वध कर सकती है। यहां तक कि शास्त्र कहता है कि कभी कभी तो महान सती स्त्रियां हुई है ना, उसके भी मन में कभी कभार तो ये विचार आया है, जहां पे वो अपति व्रता बनती है। जैसे परशुराम की माता के बारे में कथा आप सब लोग रेणुका के बारे में जानते होंगे कि गंधर्व से वो आकर्षित हुई थी, हालांकि वो सत्ययुग के समय की एक महान स्त्री है, जिसका पूरा जीवन का कैरेक्टर उस एक सेकंड को छोड़ दे तो एकदम स्पॉटलेस है, पवित्र है। महाभारत में एक कथा आती है द्रौपदी के संदर्भ में, अभी महाभारत भी कैसा है मालूम है, एक नहीं है, अनेक नाना प्रकार के उसके प्रकाशन है, तो कोई एक महाभारत उठाओ तो उसमें वो कथा नहीं मिलती है, लेकिन कोई दूसरा महाभारत उठाओ तो उसमें वो कथा आती है। तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है आदमी कि ये सही में महाभारत से ये कथा है या नहीं है, लेकिन ये एक फेमस तमिल महाभारत जो है, जो पूरे तमिलनाडु में चलती है, उस महाभारत की एक घटना है, वो बताती है वो कथा कि एक समय क्या हुआ था, पांडव 5 जो भाई थे वो द्रौपदी और कुंती के साथ जो वनवास कर रहे थे 12 साल का, तो जब वनवास का थोड़ा अंतिम समय आ रहा था तब की ये घटना है, जब भगवान कृष्ण उनके पास आए थे उनको मार्गदर्शन देने के लिए कि आगे का अज्ञातवास किस तरह काटना है करके, तो तब उन्होंने बताया कि ये काम्यक वन में जो आप इतने साल रहे इधर, अब यह स्थान छोड़ने का समय आया है, क्योंकि अब आगे अज्ञातवास होने वाला है और आगे दुर्योधन या उसके जो गुप्तचर है वो आपको न सके, इसके लिए अभी से तैयारी करना है, इस तरह से जाना है, छुप जाना है यहां से निकलकर कि वो लोग आपको एक साल तक ढूंढ न सके। तब युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि हम तो आप ही के शरण में सदैव है, आप जैसा बताएंगे वैसे ही हम करेंगे, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है, हम तो आपके मार्गदर्शन में ही जीते हैं रहते हैं, तो आप हमें बताइए कि हमें कहां जाना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं चलो हमारे साथ, हम जाएंगे साथ में, मैं एक जगह ले जाता हूं। तो चलकर जा रहे थे, बहुत चले बहुत चले, फिर एक जगह थक गए तो थोड़ा विश्राम करने बैठे, तो एक मैंगो, एक जंगल में एक मैंगो आम के वृक्ष के नीचे बैठे, और बैठे तो द्रौपदी को बहुत भूख लगी थी, तो उसने ऊपर दृष्टि किया, क्योंकि वन में फल के तो कुछ मिलेगा नहीं, तो ऊपर दृष्टि किया तो आम का वृक्ष था, एक अच्छा आम लटक रहा था, थोड़ा सा कच्चा था, लेकिन चलो भूख में तो कुछ भी खाया जा सकता है। तो अर्जुन को कहती है कि हे धनुर्धर, ये आम को तुम्हारे बाण से तोड़ो ना, मुझे भूख लगी है। तो आज्ञाकारी पति, हाँ, वो तो किसी से कुछ पूछेगा नहीं, कुछ सोचेगा नहीं, शॉपिंग मॉल में पत्नी ने बताया साड़ी लेना है तो फट करके ले देगा। जैसे इस थोड़े दिन पहले मैं वृंदावन में था, अभी 7-8 दिन पहले की बात करता हूँ, तो रामचंद्र प्रभु है ना, अपने गिरधारी पुजारी नहीं, वो और एक है गृहस्थ रामचंद्र प्रभु, वो कहे कि जाने की टिकट कैंसिल करो और हम लोग एसी से जाएंगे। मैंने बताया देखो अभी जाने की टिकट कैंसिल करके एसी से जाने के लिए आपको 2500 रुपया एक्स्ट्रा खर्च होगा, तैयार है तो मैं तत्काल से निकालता हूँ इंटरनेट पे बैठ के टिकट। तो 2 मिनट सोचे और बोले नहीं नहीं 2500 में अगर पत्नी को साड़ी लेके दूंगा तो वो ज्यादा खुश हो जाएगी। नहीं 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 करना ऐसा कहते हैं मुझे। तो वो आज्ञाकारी पति यही सोचता है कि पत्नी को कैसे संतुष्ट करूं। फिर आगे वो ये भी कहने लगे कि साड़ी अच्छा दूंगा तो मैं जब जाऊंगा ना तो मुझे अच्छा भोजन बना देगी, हाँ प्रेम से खिलाएगी, हो सकता है 2 पनीर का टुकड़ा भी डाल देगी, इसलिए टिकट मत निकालो। तो ये अर्जुन ने धनुर्धर, वो उन्होंने बाण उठाया, सीधा मैंगो को मारा और मैंगो नीचे गिरा, और गिरा तो द्रौपदी उठा के खाने गई, तब कृष्ण ने आके कहा कि अरे ये मैंगो तुम मत खाओ। तो वो पूछी क्यों, तो बोले अगर ये मैंगो तुम खाओगी तो तुम 5 भाइयों का और ये द्रौपदी का नाश हो जाएगा। बोले क्यों ऐसा, तो बोले ये बाघ जो है ना ये संदीपन मुनि का है, संदीपनी नहीं है, संदीपन अलग मुनि है, बोले इस मुनि का है, और ये मुनि क्रोधी हो जाएंगे अगर आएंगे और देखेंगे कि इनका आम को आपने बिना परमिशन तोड़ के खाया है, तो क्रोध में आपको श्राप दे सकते हैं या जलाकर भस्म कर देंगे, राख हो जाएंगे आप लोग सब, इसीलिए इस आम को मत खाओ। तो युधिष्ठिर महाराज तुरंत कहते मत खाओ, लेकिन ये आम टूट गया उसका क्या करेंगे, अब तो वो क्रोधित हो सकते हैं, श्रापित हो, श्राप दे सकते हैं, क्योंकि आम तो टूट गया, अब खाएं चाहे ना खाएं वो तो गुस्सा करने वाले ही है। तब कृष्ण कहे हाँ ये बात भी सही है, अब क्या करें। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं भगवान आप ही मार्गदर्शन दीजिए, आप ही हमेशा बचा रहे, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो भगवान कहते हैं कि अगर आप सभी लोग, आपके मन में जो चल रहा है सब समय जो चलता है, कभी कभार का नहीं, सब समय जो चलता है, तथ्य को अगर आप मुझे समक्ष प्रकट करो यथार्थ रूप में, बिना कोई मिलावट या एडल्टरेशन यानी चेंजेस के बिना, तो ये आम वापस वहां पे उसी टहनी पे लग जाएगा जैसे पहले था यथावत। तो सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज से पूछा कि आप सब समय क्या सोचते हैं, आप प्रकट करो आपका विचार, अगर गलती की ये आम नहीं लगेगा और आप सबका नाश निश्चित है, झूठ नहीं बोलने का, यथारूप जो मन में है वही बोलने का। तो युधिष्ठिर महाराज बोले मैं सब समय भगवान यही सोचता हूं कि मेरे 100 जो भाई है कौरव, ये बहुत सुखी रहे, आनंद रहे, उन्हें उनको जो इच्छा है सब पूर्ण हो, और अगर आप मुझे राजपाट दिलाएंगे तो मैं उसका भोग न करूं, मैं केवल उस सारे ऐश्वर्य का ब्राह्मण और वैष्णवों को भोजन करवाने में ही उसका इस्तेमाल करूं, गायों की सेवा करूं और सभी को सुखी और संतुष्ट देखूं। ऐसे युधिष्ठिर महाराज ने अपना मंतव्य प्रकट किया। तो जैसे ही वो बोले ना तो वो आम जमीन पे जो रखा था वो 10 फीट ऊपर हवा में उठा और उधर ही रहा, 50 फीट 60 फीट ऊपर जाना है उसको, 10 फीट ऊपर गया उधर रह गया। भीम को पूछा कि भीम तुम्हारा टर्न, अब और आगे भेजने के लिए तुम सत्य बोलो, जो सब समय तुम्हारे मन में जो चल रहा है वो बता दो, अगर तुम कुछ आगे पीछे करोगे तो गिर जाएगा, झूठ मत बोलना। तो भीम बताता है कि सब समय मैं ये केवल सोच रहा हूं कि कब मौका मिले और उस दुर्योधन को मैं मार डालूं, दुशासन का खून चूस लूं और पी जाऊं, मेरी तो केवल यही इच्छा है, मैं सब समय केवल यही सोच रहा हूं। वो और 50 फीट ऊपर गया आम, यानी वो 10 फीट ऊपर गया, सही सोच रहा था वो, जो था वो बिचारा यथारूप भक्त है ना, बता दिया ऐसा नहीं, नहीं नहीं ये मैं ये सोच रहा हूं वो सोच रहा हूं। अब अर्जुन को पूछा कि अर्जुन आप क्या सोच रहे हैं, अर्जुन कहता है कि मैं ये सोच रहा हूं सब समय कि अगर युद्ध हो जाए तो मैं उस कर्ण को नहीं छोड़ना चाहता हूं, किसी भी परिस्थिति में उसे मैं मारूंगा, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि यह बहुत कठिन है, इसलिए भगवान आपके आशीर्वाद सहायता की जरूरत पड़ेगी। 10 फीट आम और ऊपर गया। सहदेव को पूछा कि भाई आप क्या सोच रहे हो। सहदेव कहता है कि मैं तो केवल यही सोच रहा हूं कि मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर महाराज को उसका हक राज मिल जाए, वो अपना धर्म का स्थापना करें और मैं उनका सदैव सेवा करूं, इसके अलावा और मैं कुछ नहीं सोच रहा हूं। 10 फीट आम और ऊपर गया। नकुल को पूछा आप क्या सोच रहे हैं, तो नकुल कहता है कि मैं तो सदैव यही सोचता हूं कि युधिष्ठिर महाराज जैसे ही राज सिंहासन पे बैठे मैं चामर लेके सदैव उनको चामर दुलाया करूंगा, उनका आज्ञाकारी सेवक के रूप में सदैव उनके पास खड़ा रहूंगा, मुझे जो भी आज्ञा देंगे मैं वही करूंगा और कुछ नहीं करूंगा और कोई मेरे मन में विचार नहीं है। तो और 10 फीट गया, अभी 10 बचा था और वो द्रौपदी को बोलना था। अब द्रौपदी को पूछा कि आप क्या सोच रही हो कृष्ण, ऐसे भगवान कृष्ण उसको कृष्ण कह के पुकारते हैं, आप क्या सोच रही हो। तो वो बताती है मैं ये सोच रही हूं कि ये युद्ध हो, इस दुर्योधन और दुशासन का नाश हो, मुझे उसका खून मिले, मैं अपने बाल को संवारूं और बाद में राज सिंहासन युधिष्ठिर महाराज को मिले और हम सब लोग सुखी संतुष्ट रहे। आम फट करके नीचे गिरा, जमीन पे गिरा। प्रश्न हुआ अरे ऐसा क्यों। तब कृष्ण ने कहा कि सब समय तुम प्राय ये सोचती हो, ये बात सही है, लेकिन और एक चीज भी तुम सोची है कभी कभार, वो तुम नहीं बता रही हो, इसकी वजह से आम गिरा, अब सब नाश, खत्म, दी एंड। अब तो युधिष्ठिर महाराज और पांडव सब बोले अरे भगवान कृष्ण क्षमा करिए, कृपा करिए, कुछ बताइए। बोले तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ज्यादा से ज्यादा ये मदद कर सकता हूं कि द्रौपदी को पूछो कि वो सत्य बताने के लिए तैयार है, अगर वो सत्य बोलेगी तो आम चला जाएगा सीधा ऊपर, मैं इतना कर देता हूं बस, नहीं तो फिर दी एंड। तब द्रौपदी भी डरी हुई थी। अब द्रौपदी माता बोलती है, बहुत ध्यान से समझना इसको, मिसअंडरस्टैंड मत करना। द्रौपदी माता जी बोलती है कि हाँ आपकी बात सही है, मैं ये प्राय सोचती हूं, लेकिन कभी कभार मैं ये भी सोच लेती हूं कि कर्ण अगर पांडव होता, हाँ कर्ण अगर कुंती पुत्र होता तो वो भी मेरा छठा पति बनता, मैं उससे आकर्षित हुई थी। ऐसा द्रौपदी बोली, ये बात सही है, मैंने एक बात सोचा था। अब फट करके आम जाके ऊपर लग गया। तो ये स्वभाव प्रकट करवा रहा है स्त्री का, हाँ कि कभी कभार चाहे लीला के लिए भगवान ने ये बताया, चाहे शिक्षा के लिए द्रौपदी को माध्यम बनाया, जैसे भगवत गीता अर्जुन को माध्यम बना के बताते हैं, लेकिन ये स्त्री का स्वभाव प्रकट किया जा रहा है उस कथा से, उस ग्रंथ से। स्त्री के मन में ये विचार आना स्वाभाविक है, शास्त्र ये कहता है कि स्त्री को पुरुष से 10 गुना ज्यादा लस्ट होता है, 10 टाइम्स। बट हालांकि हम जिस समाज में रहते इसका कोई प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है किसी को, मुझे तो डेफिनेटली नहीं है, मैंने ये कभी नहीं देखा है ना कभी सुना है, कितनी काउंसलिंग की होगी लेकिन ऐसा कभी कोई आया ही नहीं है प्रश्न जहां पे स्त्री के लस्ट के बारे में ज्यादा मात्रा हो और चर्चा हो। पुरुष की लस्ट का चर्चा अनेक बार आया है, अनेक इवन यहां तक के कुछ इस्कॉन भक्तों ने दीक्षा विक्षा त्याग करके अपना पुराना जीवन बिताया है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली नहीं दिखा, लेकिन शास्त्र कहता है तो शास्त्र में कुछ तथ्य होगा। हो सकता है कि आने वाले 10,000 साल के बाद यह सब प्रकट होगा, अभी शायद इतना कॉमन नहीं है, या हो सकता है हम भारतीय है अमेरिका में नहीं, अमेरिका में जाए तो यह सब दिखता होगा सब जगह पे, सुनते तो है इंटरनेट पे पढ़ते हैं लेकिन प्रकट अनुभव नहीं हो रहा है इस चीजों का इस समय संसार में, लेकिन शायद शास्त्र आगे आने वाला समय की बात कर रहा है, पता नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति का जैसा जीवन बीतता है उस हिसाब से उसकी दृष्टि और विचार विचार और इम्प्रेशन अनुभव रहते हैं, अपना अनुभव का बात नहीं है। शास्त्र कहता है ये जो है वो सत्य है, क्योंकि इस्कॉन के आने के पहले मुझे तो केवल दो ही दुर्गुण थे, प्याज और लहसुन का। मैं तो चाय भी नहीं पिया है, कभी नहीं पिया है जिंदगी में, तो मुझे वो पता नहीं है कि चाय की तलब क्या होती है या कैसे होती है। तो उस चारों नियम हमारे में था पहले से, पता नहीं माता पिता ने इसी तरह से सिखाया, माता ने विशेष करके। लेकिन जिस दिन इस्कॉन में आया मुझे बताया गया प्याज और लहसुन छोड़ो, तो मैंने बोला ठीक है वो तो मामूली चीज है, ऐसा कोई कठिन नहीं लग रहा है। तो मैंने कभी ये अनुभव नहीं किया कि स्त्रियां को 10 गुना लस्ट होती है, व्यवहारिक जीवन में भी कभी नहीं देखा जा रहा है स्त्रियों का इतना वर्णन जो उर्वशी कर रही है, मैंने कभी देखा सोचा नहीं है। लेकिन शास्त्र कहता है तो शायद होता होगा कई देशों में, कहीं लोकों में, या आने वाले काल में होगा शायद। लेकिन एक बात शिला प्रभुपाद जी निश्चय कहे हैं कि भक्त स्त्रियां इसमें अपवाद होती है, भक्त स्त्रियों के साथ, क्योंकि जो जब व्यक्ति आत्मा के स्तर पे आ जाता है फिर वो न स्त्री और पुरुष ये भेद कुछ रहता नहीं है। हाँ, जैसे राधा दामोदर मंदिर के इतिहास में वहां लिखा है, बाहर भी लिखा गया है, कि जब मीराबाई जीव गोस्वामी से मिलने गई तो जीव गोस्वामी ने कहा मैं स्त्री से नहीं मिलता हूं। तो मीराबाई ने संदेश भेजा कि मैंने तो पहली पहली बार ये सुना कि वृंदावन में कृष्ण के अलावा भी कोई पुरुष है, वो आप है। मैंने तो सुना था कि सभी स्त्री हैं, तो आप भी स्त्री है तो मैं भी स्त्री हूं, तो आपसे मिलना है और भक्ति चर्चा ही करनी है तो क्या प्रॉब्लम है। तब जीव गोस्वामी ने उनको बुलाया था। ऐसे हमारे आचार्य नहीं कहते हैं, लेकिन राधा दामोदर मंदिर का इतिहास कहता है और वो उधर दीवार में भी लिखा गया है, तो ये बात सही है। लेकिन जब मीराबाई जैसी भक्त स्त्री या द्रौपदी जैसी या कुंती महारानी जैसी स्त्री, हाँ, जो भक्त के स्तर पे, जो आत्मा के स्तर पे है, उनको ये नियम नहीं लगता, ठीक उसी तरह इस संसार की स्त्रियों को भी ये नियम नहीं लगता, ये सब बातें नहीं लगेगी अगर वो भक्ति में जुड़ी हुई है तो। न वो क्रूर रहेगी, हाँ, नहीं वो दुस्साहस करेगी, लेकिन वो उन स्त्रियों के लिए जो उर्वशी जैसा अपने आप को मान लेती है इस समय, उर्वशी जैसी नहीं होती है लेकिन उर्वशी जैसा कार्य करने के लिए चलती है इस कलयुग में इस पृथ्वी पे। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की। कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न, टीका टिप्पण? हरिदास प्रभु, आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, आपको मैं क्या उत्तर दूं? आप तो मैंने परसों देखा स्त्रियों को प्रवचन दे रहे थे, आपके पास ज्ञान है वो। हाँ, अधूरा, हाँ, क्रूर, हाँ, सहनशीलता सामान्य होता है। हाँ, सही बात, प्रायः देखा जाता है। सही बात है, देखिए स्त्री जब पत्नी का या प्रेयसी का रोल करती है ना, तब ज्यादातर बातें लगती है। लेकिन वही स्त्री जब माता का रोल करती है तो आप जो कहते हैं वो बात लग जाती है। प्राय स्त्री का अलग अलग रूप होता है, अलग अलग उसका समय, उसकी स्थिति के अनुसार उसका ये होता है। प्रायः स्त्रियां पति को पसंद नहीं करती है, 2-4 साल पसंद करती है, बाद में उससे क्रोधित रहती है, नाराज रहती है। अगर सत्य बताएं अगर किसी को तो वो यही कहेगी कि वो अपने पति से असंतुष्ट है। तो वहां कुछ ऐसा होता है जब पति के मिस पत्नी या प्रेयसी के रूप में शायद ये सब बातें सही होती होगी, लेकिन माता के रूप में 99.99% ये सब बातें नहीं होती है। तो वहां पे वो सहिष्णु है, कहीं पे वो असहिष्णु है, इसीलिए इसमें अनेक विभिन्नता पाई जाती है स्त्रियों में। यह अनुभव और शास्त्र दोनों के आधार में देखा जाता है। एक जगह पे कुंती महारानी द्रौपदी जैसी महान स्त्रियां भी है, तो दूसरी जगह पे आप देख रहे हैं जैसे अजामिल के साथ एक स्त्री थी, वो वेदोक्त समय की थी। यहां तक कि भागवत में वर्णन है कि द्वारका में जब भगवान कृष्ण प्रवेश करते कुरुक्षेत्र यात्रा के बाद, तो कहीं वैश्या स्त्रियां उनका दर्शन करने के लिए आती है। मतलब क्या, उस समय थी वैसी स्त्रियां, उन दिनों में भी थी, है ना। तो स्त्री का एक विभिन्नता होता है, हाँ, जहाँ पे वो अनेक प्रकार का वो विभिन्नता अपना प्रकट करती है, कहीं पे वो बहुत ही जैसे पति के साथ वो टॉलरेंट नहीं रहती है, उसका एक छोटा सा भी बात वो सहन नहीं करती है, पति ने एक छोटा मजाक कर लिया तो इतना गुस्सा करेगी परेशान कर देगी। लेकिन वही स्त्री माता के रूप में जब पुत्र उसे कितना बिचारी को परेशान करता है वो सब सहन करती है, और झूठ भी बोलेगी, नहीं नहीं मेरा पुत्र बहुत अच्छा है, बदमाश को भी बोलेगी बहुत अच्छा है, इसके जैसा कोई है। तो देखो वो सहिष्णुता पत्नी के रूप में नहीं है, लेकिन सहिष्णुता वहां पे है उसकी। तो स्त्रियों में विभिन्नता होती है, स्त्री वैसे नारायण की शक्ति बताई गई ना, नारायण ही है वो, लक्ष्मी है, दुर्गा भी उसको शक्ति देती है। सर्व नष्ट हो जाता, सही बात है, इसीलिए तो प्राय ज्यादा लोग गरीब है, दुखी है संसार में, ठीक है। स्त्रियों को संभालने वाले के लिए बहुत इंटेलिजेंस चाहिए, बहुत ही शास्त्र का ज्ञान चाहिए, और पुरुष के पास सहिष्णुता चाहिए। शास्त्र कहता है बच्चे को, स्त्री को और वृद्ध को हमेशा क्षमा करना चाहिए। अब आज का पुरुष उसके लिए तैयार नहीं होता है कि स्त्री को सदैव क्षमा करे, चाहे माता के रूप में खड़ी है, चाहे पत्नी के रूप में खड़ी है, चाहे पुत्री के रूप में खड़ी है, लेकिन स्त्री को क्षमा करना ये पुरुष को सीखना चाहिए। जो पुरुष स्त्री को क्षमा करने का सदैव सीखता है ना, वो प्रगति में रहता है, और जो नहीं सीखता है ना वो एक दिन बर्बाद होता ही है, निश्चय है वो। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की
पद्मनाभ प्रभु की।